धवला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर एक। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सौवसाहूणम। सिद्धमणंतमणिंद्रिय मणुवमम पत्थसौखमणवर्चम, केवल पहोहणिज्य तुन्नयतिमिरं जिनम नमः। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडाकम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये षटखंडाकम में से पहला खंड है जीवस्थान, और उसकी पहली प्ररूपना है सत प्ररूपना, जो पहले पुस्तक में हमने देखी, उसी का विषय अभी यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन में है। तब यहाँ हम पढ़ेंगे, यहाँ पृष्ठ संख्या जो है वो पहले पुस्तक से यहाँ कंटिन्यूटी दी है, तो 413 नंबर का पृष्ठ। यहाँ पढ़ते हम जो हिंदी वाला, सत प्ररूपणा के सूत्रों का विवरण समाप्त हो जाने के अनंतर अब उनकी प्ररूपणा का वर्णन करते हैं। मैंने सूत्रों के अर्थ बता दिए, अब उसमें जो प्ररूपणा की है उसकी बात करते हैं। प्ररूपणा ने उसका कथन, जिसे 20 प्ररूपणा कहते हैं ना, 20 प्ररूपणा में क्या क्या आता है, गुणस्थान भी है, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, जो 14 मार्गणा और लास्ट में उपयोग, इसको 20 प्ररूपणा कहते हैं। ये जीव का विशेष व्याख्यान, प्ररूपणा का अर्थ है विशेष व्याख्यान। शंका, प्ररूपणा किसे कहते हैं, हमारे प्रश्न पूछा ना उन्होंने। समाधान, सामान्य और विशेष की अपेक्षा गुणस्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, अभी 14 नाम लेंगे मार्गणा के, गतियों में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशाओं में, भव्यों में, अभव्यों में, अभी भव्य और अभव्य दोनों को ले लिया, सम्यक्तों में, संगी असंगियों में, आहार्य अनाहारियों में और उपयोगों में, पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसे प्ररूपणा कहते हैं। यानी इन सब में तो विशेषताओं को हम देखेंगे, यानी ये 20 प्ररूपणाएं कही जाती है, अब उसका विशेष से वर्णन चलेगा। इसके लिए उत्तम च वाली गाथा है ऊपर, और ये गोमरसार जीवकांड की भी 2 नंबर की गाथा है, यानी जीवकांड की। गुण जीवा पज्जी पाणा सन्नाय मग्गणाय वजो गोविय कमसो रीसम तु परुवणा बनिया, उनके उक्तम च वाली 222 वाली गाथा है, परंतु यहाँ पर गोमरसार जीवकांड में ये 2 नंबर की गाथा है। तो गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग, इस प्रकार क्रम से 20 प्ररूपणाएं कही गई है। यानी पूरे जीवकांड का विषय यही है कि जीव की 20 प्ररूपणाएं। अब 20 प्ररूपणाओं में से 3 प्ररूपणाओं को छोड़कर शेष प्ररूपणाओं का अर्थ पहले कहे आए हैं, अतः यहाँ पर प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन 3 प्ररूपणाओं का अर्थ कहते, क्या कहना चाहते हैं। पहले हमने 20 14 गुणस्थान देखे थे, 14 मार्गणा भी देखी है, यानी गुणस्थान की बात हो गई है, मार्गणा के जीव समास को भी उन्होंने कहा था। इसलिए यहाँ इतनी बातें रे प्राण संज्ञा उपयोग। क्योंकि पर्याप्ति के बारे में भी यहाँ चर्चा अपनी हुई थी पहले, पर्याप्त अपर्याप्त क्या होता है वगैरह। इसलिए जिनका कथन नहीं किया उनकी बात अभी यहाँ चलेगी। अब प्राण की बात पहले कहते हैं, जिनके द्वारा जीव प्राणित अर्थात जीता है उन्हें प्राण कहते हैं। वैसे तो जीव ही उसको कहते जो अनादि से जीता रहे अनंत काल तक जीता रहेगा, यानी उसके चैतन्य का जो व्यापार है वही उसका प्राण है, जानन देखन क्रिया, वो तो कभी मिटने वाली नहीं है। अब यहाँ जो प्राणों की बात करेंगे इसको द्रव्य प्राण कहेंगे। किसी पर्याय में उन्हें जन्म लिया, अब यहाँ मरा, ये जो कहते हैं तो द्रव्य प्राण के विनाश को यहाँ मरण कहेंगे। उन प्राणों की यहाँ चर्चा चलती है। तो वे प्राण कौन से हैं? उसका समाधान पांच इंद्रिय, इंद्रिय कहने से ही पांच इंद्रिय प्राण कहना चाहिए, मनोबल वचन बल काय बल, यानी पांच ग्रुप करेंगे तो इंद्रिय प्राण, फिर ये बल प्राण में तीन हो गए, मनोबल वचन बल और काय बल, उच्छ्वास निश्वास को या श्वासोश्वास नामक एक प्राण है और आयु, ये दस प्राण हैं। पांच इंद्रिय प्राण, तीन बल प्राण, पांच तीन आठ हो गए, श्वासोश्वास नौ हो गया और आयु, ये दस प्राण है। ये संगी पंचेंद्रियों की अपेक्षा बताई जाती है और वो भी पर्याप्त है।
तो एक इंद्रिय रहेगा तो एक इंद्रिय,
अभी पांच इंद्रिय नहीं एक ही इंद्रिय होगा
तो एक इंद्रिय प्राण,
हाँ, और मन बल वचन बल नहीं होगा, इस तरह से सोचना है हमको। इसमें भी पर्याप्तों में अपर्याप्तों में विशेषता होगी, पर्याप्तों के तो श्वासोच्छ्वास होगा, अपर्याप्तों के वो भी नहीं होगा। इन हमने पर्याप्ति के प्रकरण में देखा था, सभी पर्याप्ति एक साथ शुरू होती है, तो जीव पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो तो उनके पर्याप्ति तो सभी कहलाती है। 414 पृष्ठ पर आए हम सेकंड नंबर का। यहाँ प्राणों की चर्चा चले, पहले उन्होंने 20 प्ररूपणाओं के नाम बताए हैं और गुणस्थान जीव समास वगैरह अन्य जो प्ररूपणा मार्गणा वो सब बता चुके थे। इसलिए यहाँ प्राण संज्ञा और उपयोग की बात चलेगी। ये पैराग्राफ नीचे का, इन पांचों इंद्रिय प्राणों का एक इंद्रिय जाति आदि पांच जातियों में अंतर्भाव नहीं होता है, क्योंकि यानी जाति वही है और वही प्राण है ऐसा है क्या? तो कहते नहीं, चक्षु इंद्रियावरण आदि कर्मों के शोषण निमित्तक, यानी शोषण के निमित्त से, निमित्तक यानी उसके कारण से, इसके निमित्त से इंद्रिय प्राणों की एकेंद्रिय जाति आदि जातियों के साथ समानता नहीं पाई जाती। क्या कहते हैं? इंद्रिय प्राण किसको कहना? तो उस संबंधी ज्ञानावरण जो सूक्ष्म है और यहाँ ज्ञान का उघाड़ है, जितना उघाड़ है हमने लब्धि और उपयोग मिलकर ज्ञान की पर्याय होती है हमने देखा था, उसको भावेंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय प्राण अलग बात है और एकेंद्रिय जाति द्विंद्रिय जाति आदि अलग बात है। उक्त पांचों इंद्रिय प्राणों का इंद्रिय पर्याप्ति में भी अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि पर्याप्ति जुदी बात है और प्राण जुदी बात है। पर्याप्ति हमने देखी थी, आहार पर्याप्ति है, फिर शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति। पर्याप्ति तो शक्ति थी, वो कारण है और ये कार्य रूप है। पर्याप्ति तो अंतर्मुहूर्त में डेवलप हुई थी, अब ये तो पूरे लाइफ टाइम उसके जानने का कार्य तो चलेगा, इसको प्राण में लेना। इसलिए कहते हैं क्योंकि नाम तो वही है ना, इंद्रिय पर्याप्ति और यहाँ इंद्रिय प्राण, तो उसमें भी ये इंक्लूड नहीं होता, ये डिफरेंट है, प्राण डिफरेंट है और पर्याप्ति अलग है। तो कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति में भी अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि चक्षु इंद्रिय आदि को आवरण करने वाले कर्मों के सूक्ष्म स्वरूप इंद्रिय प्राणों को, इंद्रिय प्राण किसको कहा? ये ज्ञानावरण का सूक्ष्म, और सूक्ष्म की अपेक्षा बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति के उत्पन्न करने में निमित्तभूत पुद्गलों के प्रचय को एक होने में विरोध आता है। ये इंद्रिय पर्याप्ति में उन्होंने पुद्गलों का प्रचय भी ले लिया हो। देखो क्या कहते हैं, क्षोभशम की अपेक्षा, यानी जैसा जिसका क्षोभशम है वहाँ बाह्य पदार्थों को ग्रहण करना यानी जानना, जानने की शक्ति के उत्पन्न करने में निमित्त भूत, यानी जहाँ वो तो इंद्रियों की रचना हुई है, इंद्रिय पर्याप्ति में क्या है, जहाँ वो ग्रहण रूप व्यापार चलेगा, जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम रूप को वर्ण को ग्रहण करते हैं, तो वहाँ की जो पुद्गलों की रचना है वहाँ के आत्म प्रदेशों में से वो ग्रहण होता है, हमने ये देखा था इंद्रिय पर्याप्ति में। तो कहते बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति के उत्पन्न करने में निमित्त भूत, पुद्गलों के प्रचय को एक होने में विरोध आता है। पुद्गलों का प्रचय यानी संचय, यानी वहाँ उसकी जो कुछ रचना होती है उसको यह इंद्रिय पर्याप्ति में ले लिया है, यानी शक्ति के उत्पन्न होता है, हमने देखा शक्ति की पूर्णता होना उसको पर्याप्ति कर लिया, परंतु उसमें वो पुद्गलों की भी रचना उसमें निमित्त है। उसी प्रकार मनोबल का, ये मनोबल प्राण का नाम है, मन पर्याप्ति वो पर्याप्ति का नाम है, मनोबल का मन पर्याप्ति में भी अंतर्भाव नहीं होता है, क्योंकि मनोवर्गणा के स्कंधों से उत्पन्न हुए पुद्गल प्रचय को, पुद्गल प्रचय ने पुद्गल की वो तो संचय, उसका जो रचना मनोवर्गणा से द्रव्यमन उत्पन्न हुआ है ना, पुद्गल प्रचय को और उससे उत्पन्न हुए आत्मबल को एक होने में विरोध आता है। उससे उत्पन्न हुआ आत्मबल, मनोबल कहो, ये प्राण की बात है यानी मन के द्वारा जानने का कार्य, और यह पुद्गल यानी द्रव्यमन की रचना, तथा वचन बल भी भाषा पर्याप्ति में अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि आहार वर्गणा के स्कंधों से उत्पन्न हुए पुद्गल प्रचय का और उससे उत्पन्न हुई श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य पर्याय से परिणमन करने रूप शक्ति का परस्पर समानता का अभाव है। यानी वो पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। यानी वचन बल में श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य यानी जानने योग्य पर्याय से परिणमन करने रूप शक्ति, तथा काय बल का भी शरीर पर्याप्ति में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि वीर्यांतराय के उदयाभाव और उपशम, उसका अर्थ होता है क्षोभशम, उदयाभाव और उपशम हमने पहले देखा था, सर्वघाती का उदय का अभाव और उपशम, तो उसी को हम क्षोभशम कहेंगे। कि वीर्यांतराय के क्षोभशम से उत्पन्न हुए क्षोभशम की और खलरस भाग की निमित्त भूत शक्ति के कारण, यानी पुद्गल को जो ग्रहण कर रहा हुआ पुद्गल है उसको खलरूप और रसरूप परिणामाय की आत्मा की शक्ति है, वो निमित्तभूत शक्ति के कारण पुद्गल प्रचय की एकता नहीं पाई जाती, यानी वो पर्याप्ति जुदा है और प्राण जुदा है, उसमें एकता नहीं है, बस इतनी बात बताना चाहते हैं। यानी काय बल में भी उन्होंने वो वीर्यांतराय का क्षोभशम ले लिया और उसके कारण जो उसका वहां उत्पन्न हुई बात है, और बाकी जो पुद्गल परमाणुओं को जो परिणामाने की जो शक्ति है उसके निमित्तभूत जो शक्ति है उसका कारण पुद्गल प्रचय है, उसको पर्याप्ति में लिया, वो अलग बात है। इसी प्रकार उच्छ्वास निश्वास प्राण कार्य है जो आत्मोपादान कारणक होता है, आत्मा के उपादान कारण से होता है, तथा उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति कारण है जो पुद्गलोपादान निमित्तक होती है, अतः इन दोनों में भेद समझ लेना चाहिए। डिफरेंस है बस इतनी बात है, यानी प्राणों में तो आत्मा की पर्याय लेना है जानने रूप या जो कुछ है, और पर्याप्ति में तो उसके पुद्गल को लेना या पुद्गल की रचना को ले लिया है सर्वत्र। हम तो पर्याप्तियों को भी वो शक्ति की अपेक्षा वर्णन करते हैं, परंतु शक्ति के कारण पुद्गलों में वहाँ कुछ हो गई ना बात विशेषता, उसको लिया यहाँ पर। मैंने आत्मा की तो वो निमित्त बनने की शक्ति है ही, उसके कारण वहाँ पुद्गलों में जो कुछ विशेषताएं हुई उसकी बात है। मैंने प्राण और पर्याप्ति में अंतर है, हमने जब सीखा था तो वो जाना था पर्याप्ति कारण है और प्राण उसका कार्य है। 415 पर आ गए। अब संज्ञा चार प्रकार की, यहाँ डायरेक्ट अभी संज्ञा पर आ गए हैं, तो आप अभी डिराइव कर सकते हैं किस जीव के कितने प्राण हैं। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के कितने अभी गिनाए हमने, ये सब दिए वो कितने हुए,
दस
हुए। अब संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त है, अपर्याप्त है ना, उसकी भाषा पर्याप्ति हुई ना मनोपर्याप्ति हुई ना उच्छ्वास पर्याप्ति हुई, तीन गए यानी अपर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास नहीं होता। इंद्रिया तो जितने उतने लेना है, क्योंकि भले वो इंद्रिय पर्याप्ति हुई कि नहीं उसकी बात नहीं है, परंतु वहां पर उतना क्षोक्षण लेके आया है, ज्ञानावरण का क्षोक्षण तो है ही, इसलिए वहां पर इंद्रिय पर्याप्ति तो सब लेना, तो पांचों इंद्रिय पर्याप्ति लेना, तीन बल में से वचन बल भी नहीं लेना, मन बल भी नहीं लेना, काय बल लेना,
श्वासोश्वास नहीं लेना,
और आयु तो है ही, तो सात हो गए। असंगी पंचेंद्रियों में कितने हो गए पर्याप्त में और अपर्याप्त में, पर्याप्त में क्या मनोबल नहीं होगा तो उसके नौ हो गए,
दो नहीं होगा,
नौ में से दो गए तो सात, पहले दस सात था ये नौ सात। अब चतुर इंद्रिय जीवों में क्या होगा,
चार इंद्रिय,
इंद्रिय प्राण चार हो गए,
मन नहीं होगा,
मन है ही नहीं है, वचन बल है, काय बल है, उच्छ्वास है
और
आयु है, तो हमने एक इंद्रिय प्राण और एक मन बल प्राण दो छोड़े, यानी आठ है, आठ है, और उसमें से और दो कम कर अपर्याप्त को वचन बल भी नहीं है, तो आठ में से दो कम गए छह हो गए। अब इसके आगे दो दो ही कम करना, एक इंद्रिय में बाद में देखना, तीन इंद्रिय जीवों के तीन इंद्रिय प्राण, दो बल प्राण है, पांच हुए श्वासोश्वास और आयु, सात हुए, और उसी के अपर्याप्त में
श्वासोश्वास और
वचन में नहीं है, तो सात और पांच, द्विइंद्रिय में
दो इंद्रिय,
हाँ दो इंद्रिय प्राण,
वचन भी नहीं होगा,
वचन है ना द्विइंद्रिय,
वचन है, मन नहीं होगा,
यानी दो इंद्रिय प्राण, दो बल प्राण, श्वास
और आयु
छह, उसमें से दो कम कर चार। अब एक इंद्रिय को बताना,
एक
इंद्रिय प्राण,
मन नहीं है, वचन नहीं है, काय,
एक काय बल,
श्वास
है, आयु, पर्याप्तों को चार हो गए
उसको दो,
और अपर्याप्तों के दो कैसे,
काय तो है, काय
उनमें हम वचन और श्वासोश्वास कम कर रहे थे, अब इसमें से एक ही कम करना है, चार और तीन, यहाँ तक बात ख्याल में, अब अरिहंत भगवान को देखो, पांचों इंद्रिय प्राण नहीं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जानते नहीं है, और मनोबल भी नहीं लेना है, तो क्या वचन बल रह गया, क्योंकि वो दिव्य ध्वनि है ना, और काय बल रह गया, विश्वास भी लेना, और आयु भी चार रहेगी, और फिर वो निरोध करते वगैरह वगैरह आयोगी में चले जाते, तो हाँ ऐसा कम होते हैं, नहीं भी कम की बात करेंगे हम, डायरेक्ट चौदहवें में क्या है, काय बल भी नहीं है, श्वासोश्वास भी नहीं है, क्योंकि वो सब योग का निरोध कर दिया अभी, तो आयु प्राण शरीर है, परंतु वो काय बल प्राण नहीं है, ना शरीर के परमाणु को ग्रहण हो रहा है, कुछ छोड़ने की बात चल रही है, इस तरह से वो उसकी चर्चा हम
योग निरोध में नहीं,
नहीं योग निरोध में भी सूक्ष्म होता है ना पहले, और फिर बाद में मिट जाता है, यानी संयोग के अंत समय तक है ग्रहण, क्योंकि तब तक कर्मों का उदय है, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तेजस कर्मन शरीर नाम कर्म का उदय है, अभी वो काइबल में उसको नहीं लेते परंतु उदय की अपेक्षा बता रहे हैं, तब तक कर्मों का भी ग्रहण है और शरीर का भी ग्रहण है अंतिम समय तक। क्योंकि जैसे हमने देखा था ना सूक्ष्म सांप्राय होता है ना, क्या है तो वहाँ कृष्टि की जाती है कषाय में, वैसे यहाँ पर भी कृष्टि नाम है, योगों की भी कृष्टि होती है, इतना सूक्ष्म होता है फिर भी है तब तक उसको गिनेंगे आगे। अब ये नया विषय 415 पेज पर, संज्ञा चार प्रकार की, संज्ञा ने तीव्र इच्छा वांछा वासना जिसको कहेंगे, कि जिसकी पूर्ति होवे या नहीं होवे जीव दुखी होता है इस भव में भी और पर भव में, क्योंकि इसी के कारण तो उसको हाँ राग द्वेष के परिणाम भी है, उसका बंध भी है और उसका परिभ्रम चलता है। संज्ञा चार प्रकार की है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। मिथ्या दृष्टि तो उसके चारों है ही है, ये बेसिक उसके जीवों के साइंस में तो इंस्टिंक्ट्स कहेंगे, तो सहज रूप से कोई सिखाना नहीं पड़ता उसको। अभी 223 को पढ़ेंगे, इह जाहि वाहि आविय जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्ताविय उभये तावो चत्तारि सन्नाओ। इस श्लोक में जिनसे बाधित होकर, यानी ये संज्ञाओं के कारण बाधित यानी पीड़ित होकर, यानी उसका दुख सहा नहीं जाता है, तथा जिनका सेवन करते हुए यानी उसको भोगते हुए संज्ञाओं का जब चल रहा है, ये जीव दोनों लोकों में, दोनों लोक यानी यह लोक और परलोक, यानी चालू वर्तमान आयु में भी और परभव में भी दारुण दुख को प्राप्त होते, सादे नहीं दारुण दुख को प्राप्त, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो ये पीड़ित है, तो हमें तो लगता है देव तो कितने सुखी है, परंतु वो विषयों की अभिलाषा से पीड़ित है कि नहीं है, सभी उपलब्ध है, उपलब्ध है तो भोगने की इच्छा भी है वहां पर और उससे वो पीड़ित है।
तो परलोक में कोई हम लोग तो नहीं भूल जाते हैं ना,
भूल जाते हैं, परंतु वो तो सारा कर्म साथ में ले जाते हैं, वो तो निमित्त रूप से यहाँ ये जो इच्छाएं की है, इच्छाएं की संज्ञा हुई है उसके कारण जो भोगने के परिणाम अभिलाषा जो कुछ है, और प्राप्त करने के लिए जो कोई प्राप्त पाप भी किया है तो उसके फलस्वरूप वो तो दारुण दुखों को प्राप्त होगी होगी, और मूल में इनके कारण मैं सुखी होता है तो मान्यता उसके पीछे पड़ी है, और वो तो अलग बात है, उसका दुख तो और है। वैसे सम्य दृष्टि को भी ये संज्ञा यथा योग्य गुणस्थान तक पाई जाएगी, बताएंगे कहाँ क्या है। उसके चार भेद है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। केवल आहार नहीं कहना, आहार संज्ञा लेगी हम, क्योंकि संज्ञा उनके भेद है। अब ये क्यों उत्पन्न होती है तो उसमें दो दो कारण बताएंगे, जिसको निमित्त भी, ये सारे निमित्त ही है, तो निमित्त में दो प्रकार होते हैं, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। तो अंतरंग निमित्त किसको कहना और बहिरंग किसको कहना है, हाँ जो नियम रूप निमित्त, चाहे जिस किसी में वो, तो वो निमित्त तो होगा ही होगा, उसको कहेंगे अंतरंग। बहिरंग मेरी भाषा में वेरिएबल होता है, अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य होगा, किसी की भूख लगी है, किसी ने वो तो ऐड देखी खाने पीने की तो उसको भूख लगी, किसी के तो खाद्य पदार्थ टेबल पर देखे या चर्चा सुनी आपस में, ये ऐसा है वैसा है, फिर खाने की इच्छा हुई, यानी वो जो बहिरंग कारण अलग अलग होते हैं। अंतरंग कारण क्या है, वो कर्मों का जो उदय उदयना है वो सबके लिए वही होगा, तो आरोप तो हम बाह्य कारणों पर करते हैं। हमने बच्चों को बुलाया, उसको तो भूख नहीं थी और इसने उसने देखा कि क्या बनाया, तो भाई मुझे बहुत भूख लगी है तो जल्दी दे दो माँ, ऐसा होता है ना। तो यहाँ यही बात बता रहे 224 में, अभी हमने दो पढ़ा ना, कहीं तो हाँ पढ़ेंगे ऊपर। आहार दंशनेन तस्सुवचोगेन ओम कोठाए सादिदरुदीरणाए अवदेव आहार सन्नाहु। आहार के देखने से यानी खाद्य पदार्थों को देखने से, उसका उपयोग होने से यानी उसके बारे में सोचने से, पेट के खाली होने से, तथा असाता वेदनीय कर्म की उदीर्ण होने से, बाकी सारे ये जो बहिरंग कारण बताएंगे और सबके लिए वो होगा ही नियम रूप निमित्त, वो कौन सा है? असाता वेदनीय का उदीर्ण, उदीर्ण कहो तीव्र उदय कहो,
तो असाता वो
अंतरंग का, यहाँ सर्वत्र कर्म को ही लेना है, परंतु अंतरंग निमित्त का अर्थ कर्म का उदय ऐसा नहीं लेना। जैसे जीव कुद्गल गमन करते हैं, नियम रूप निमित्त क्या है? धर्म द्रव्य है, उसको हम कहेंगे अंतरंग। हम जीवों के विभाव में यूजुअली कर्मों की बात करते हैं, परंतु कर्म है वही अंतरंग निमित्त ऐसा नहीं कहेंगे। तो असाता कर्म की उदीर्णा होने से जीव के नियम से आहार संज्ञा होती है। अब ये जो अन्य अन्य जो बातें असाता के उदय उदीर्णा से होती है, वैसे तो हर अंतर्मूर्त असाता साता का उदय चल रहा है, परंतु उदीर्णा कहने से उसका तीव्र अनुभाग का तीव्र उदय लेना। 225 मदंसनेन तस्वजोगेन ओम सती भयकम उदीर्णाए भय सन्ना जाय दे चुही। देखो ऊपर लिखा ना, अय भीम दंशन है, भीम यानी भीम काय जिसको कहते हैं ना, प्रचंड ऐसे अत्यंत भयानक पदार्थों के देखने से, यानी भय संज्ञा क्यों उत्पन्न होती है? भय देखो आहार संज्ञा का अर्थ क्या है? इच्छा किसकी हुई? खाने की। तो भय संज्ञा में इच्छा किसकी हुई? इच्छा क्या हुई? भागने की हुई, छिपने की हुई। पहले क्षुधा से खाने की इच्छा हुई, या भय से भाग जाओ या छिप जाओ या इसे अपने प्रोटेक्शन करो, ये इच्छा हुई इसकी। या हम बच्चे भी स्टोरी सुनते तो माँ का हाथ पकड़ कर, यानी वो तो कहीं प्रोटेक्शन चाहिए उनको। तो अत्यंत भयानक पदार्थों के देखने से, उनका ख्याल होने से, शक्ति के ही होने से, कमजोरी होती है, कोई बीमारी होती है तो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ उसको गड़बड़ी दिखती है, भूत आया मेरे को बता रहा है जो कुछ ऐसा। और भय कर्म की उदीर्णा होने से, ये भय कर्म कौन सा कर्म है?
नो कर्म है।
नो कर्म नहीं कहना, नो कषाय कर्म। हास्य रति रति शोभ है। इन चार कारणों से, ये अलग अलग बताए, अभी अनेक कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक तो बहिरंग में तो अन्य अन्य, जैसे अभी कोई सीरियल हो गई भूतों की, ये वो लोगों को वो तो भय यानी कषाय अच्छा लगता है, तो पैसे दे देकर वहाँ पर डरते रहते। यानी ऐसे उसकी स्टोरीज पढ़ने से या उनके ऐसी कोई चीजें दूसरों की एक साथ बात हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, चोर ने ऐसा किया या कोई घर लूट लिया, तो भय लगता है अपना भी कुछ लूट जाएगा, ये सब उसमें ले लेना, ये भय संज्ञा उत्पन्न होती है। आगे मैथुन संज्ञा की बात पढ़ेंगे ऊपर 226 में। पणिदर सभोयने नय तस्व जोगे कुशील सेवाए वेद सुदीरणाए मेहुन सन्ना हवदि एवं। स्वादिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त पदार्थों का भोजन करने से, जिसको कहते हैं हेवी या गरिष्ठ ही उसका नाम है, जैसे मावे की बनाई हुई है गरिष्ठ भोजन। स्वादिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त पदार्थों का भोजन करने से, उस ओर उपयोग होने से, यानी श्रृंगार की अन्य अन्य कथाएं सुनने से या उसको देखने से, कुशील का सेवन करने से और वेद कर्म की उदीर्णा होने से, ये जो तीव्र उदय उदीर्णा हम कहेंगे, मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। देखो ऊपर हमने जो आहार संज्ञा देखी थी उसमें क्या कारण बताया था? असाता के उदीर्णा, उसमें हमने देखी थी, वो तो ये नियम है कि साता हो या असाता हो उसकी उदीर्णा छठे तक की है, तो आगे उसकी उदीर्णा नहीं है तो आहार संज्ञा छठे तक होगी, सातवें से आगे नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, भय संज्ञा, भय नो कषाय का उदय कहाँ तक है? उदय की उदीर्णा आठवें तक है, ये छह की उदीर्णा आठवें में होती है और वेद की उदीर्णा नवे में, सॉरी विच्युति नवे में होती है। जहाँ तक उदय है वहीं तक उदीर्ण हो सकेगी, इसलिए उदय की अपेक्षा वहाँ तक बताया जाता है। वहाँ उसका मुनिराज है, आठवें में कोई भागने की तो बात ही नहीं है, भय भी उनको वैसा नहीं है। सप्त भयों का नाश तो सम्य दर्शन से ही हुआ है, श्रद्धा की अपेक्षा। जितनी चारित्र में स्थिरता है, चारित्र अपेक्षा भी ना, फिर भी कर्म वहाँ तक उदय रूप है, अत्यंत हीन अनुभाग में होगा, वहाँ तक कहने में आएगा, जो केवली गम्य। ऐसे अभी जो मैथुन संज्ञा है नवे के पहले भाग तक, तीनों ही वेद का उदय पाया जाता है, इसलिए वहाँ तक कहने में आएगी। इसलिए कहते वेद कर्म की उदीर्णा इसका कारण है। 227 ऊपर उवयरण दंसने नयन तस्व जोगेन मुच्छिदाय लोह सुदीर्णाय परिग्रहे जायदे सन्ना। भोगोपभोग के उपकरण देखने से, यानी दूसरों की चीज़ें देखने से, किसी का अच्छा घर है, किसी का और क्या है, कपड़े है, वस्त्र है, दागे गहने हैं, तो भोग और उपभोग के उपकरण देखने से, उनका ख्याल होने से यानी उसके बारे में सोचने से, मूर्छा के होने से यानी वो देख देख कर मूर्छा का होना यानी मोहित होना उसमें, ये अपने को भी चाहिए वाली ममत्व भाव होना, और लोभ कर्म की उदीर्णा होने से यानी उस समय लोभ कर्म की उदीर्णा है तो उसके वो लोभ कषाय पाए जाते, परिग्रह संज्ञा उसको कहा, परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है। वो तो दसवें तक कहेंगे, वो भले सूक्ष्म लोभ भी है उसको भी परिग्रह संज्ञा नाम देंगे। शंका, मैथुन संज्ञा का वेद में अंतर्भाव हो जाएगा या क्या कहते हैं? जैसे वहां तो प्राण और पर्याप्तियों की तुलना की ना, तो उसमें इसको अलग प्ररूपना क्यों कह रहे हैं? ये वेद की जो वेद मार्गणा में प्ररूपना हो चुकी है तो यहाँ उसका अलग से क्यों संज्ञा नाम देके उसको यहाँ क्यों इंक्लूड किया, ये उनका प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि तीनों वेदों के उदय सामान्य के निमित्त से, उदय सामान्य ने वो तो कौन सा वेद है वो नहीं, वो उसका उदय है बस इतनी बात है। वेद मार्गणा में हमने जीवों के भेद किए थे, कोई स्त्री वेदी, कोई पुरुष वेदी, कोई नपुंसक वेदी, कोई अपगत वेदी, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, यहाँ तो सामान्य से बात है। उसका उदय जो पाया जाता है, उत्पन्न हुई मैथुन संज्ञा और वेदों के उदय विशेष स्वरूप वेद, एक तो यहाँ उदय है बस इतना बताना है, और वहाँ कौन सा उदय है विशेष है, स्त्री वेद का उदय है कि पुरुष वेद का है, नपुंसक वेद का है, क्या उसका उदय ही नहीं है, अवगत वेद है, उसकी चर्चा वेद मार्गणा में, और यहाँ बस वेद का उदय है, उसकी उदीर्णा भी होती है जहाँ, तो उसको यहाँ मैथुन संज्ञा कह देती, इसलिए दो बातें अलग है, ख्याल में है ना, दोनों में विवक्षा अलग अलग है। परिग्रह संज्ञा भी अभी उनके शंका पूछने के पहले बता रहे, लोभ कषाय के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होती, यानी क्योंकि लोभ कषाय वो कषाय मार्गणा में आ गए, परंतु कषाय मार्गणा अलग बात है, और यहाँ तो परिग्रह संज्ञा कहेंगे वो तो अलग बात है, क्योंकि बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला होने के कारण परिग्रह संज्ञा व्यपदेश को धारण करने वाले लोभ से, ये परिग्रह संज्ञा जिसका कह रहे हैं, लोभ के उदय को परिग्रह संज्ञा कह दी यहाँ पर, और लोभ कषाय के उदय रूप सामान्य लोभ का भेद है, वहां तो सामान्य से वो लोभ कषाय का उदय कहेंगे उसको लोभ कहेंगे, वो बात अलग है, और यहाँ जिसको परिग्रह संज्ञा दे रहे हैं उसमें बाह्य पदार्थों के निमित्त उसको भी ले लिया है, क्योंकि अंतरंग बहिरंग दोनों कारण बताए, उसी को समझा रहे, अर्थात बाह्य पदार्थों के निमित्त से जो लोभ होता है उसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं, होता तो अपने से, विकार अपने से हुआ हा? परंतु यहाँ उसके निमित्त में बाह्य रंग भी पदार्थ ले लिया, और सामान्य लोभ कषाय के उदय से उत्पन्न हुए परिणामों को लोभ कहते हैं, यानी यहाँ तो जीव के जो कषाय है, कषाय मार्गणा में उसका वर्णन आया था। शंका, यदि ये चारों ही संज्ञाएं बाह्य पदार्थों के संसर्ग से उत्पन्न होती है तो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवों के संज्ञाओं का अभाव हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको तो बाह्य उपयोग नहीं है। समझा, नहीं, क्योंकि अप्रमत्तों में उपचार से उन संज्ञाओं का सद्भाव स्वीकार, अप्रमत्तो में अप्रमत्त गुणस्थान कौन से, सातवें से ऊपर सारे अप्रमत्त है, तो उसको सबको मिलकर अप्रमत्तो में कह दिया है। पहले से छठे तक सारे प्रमत्त है और ये सारे अप्रमत्त है, तो उपचार से क्यों कहा, क्योंकि वहाँ उन कर्मों का उदय पाया जाता है और वे तो स्वयं तो उनके अपने भाव तो उनके अपने भी ख्याल में नहीं आते, बुद्धि में नहीं आते, उसको कहेंगे अबुद्धिपूर्वक, परंतु केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, इसलिए बताते हैं। अब ये संज्ञा की बात हो गई, अब जो 20 नंबर की प्ररूपणा उपयोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको लगेगा संज्ञा में ये सोपर का कहां आ गई बात है? तो स्वर पर को ग्रहण करने वाले, ग्रहण करने वाले ने जानने वाले परिणाम विशेष को उपयोग कहते हैं, यानी जो स्व को और पर को जानने का कार्य करता है वो उपयोग, जानने रूप परिणाम हो रहा है वो उपयोग कहा भी है। 228 ऊपर, वत्थु निमित्तम भावो जादो जीवस्स जो दुवजोगो सो दुविहोणाय वो साया रोचे वर्णायरो। वस्तु को ग्रहण करने के लिए जीव का जो भाव होता है, देखो ग्रहण करना है, कोई लेना नहीं हो तो ले दे सकते नहीं, कोई लेन देन ही नहीं वस्तु में। ज्ञान में उसका जो जानना होता है उसी को, यानी देखने के लिए, जानने देखने दोनों के लिए ग्रहण शब्द आता है, अवलोकन शब्द आता है, प्रतिभास आता है, परिचिति आता है, अलग अलग शब्द आते हैं। तो वस्तु को ग्रहण करने के लिए जीव का जो भाव होता है, उसका जो परिणमन होता है, उसे उपयोग कहते हैं। उसके दो भेद है, साकार उपयोग और निराकार। साकार आकार यानी उसके भेदों का ग्रहण करना, विशेषों को ग्रहण करना यानी जानना, ज्ञान उपयोग। और फिर दूसरा कौन सा बताएं, निराकार। निराकार यानी सामान्य से, क्योंकि उसके विशेषों को जानेंगे तो वस्तु को पहचान लेंगे, यहाँ पहचानने का कार्य नहीं हो रहा है तो उसको
दर्शन उपयोग
वो दर्शन उपयोग, निराकार दर्शन उपयोग। अब उसी की चर्चा करें 229 में, मधिसुद ओहि मणेहिय सग सग विषय विशेष विन्नाणम अंतो मुहूर्त कालम वजो गो सो दुसायारो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के द्वारा, ऊपर मधि सुध ओहि मणे ही अंतर्मूर्त काल पर्यंत अपने अपने विषय का जो विशेष ज्ञान होता है उसे साकार उपयोग कहते हैं। अंतर्मूर्त काल पर्यंत इसलिए लिया, एक सूक्ष्म ज्ञान है, एक विषय को अंतर्मूर्ति भले छोटा अंतर्मूर्त अपने पकड़, क्योंकि हम इसको जानकर फिर दूसरी वस्तु जानते हैं, परंतु उसने अंतर्मूर्त तक इसको ही जानते रहा तो उसके ज्ञान में आया। तो एक एक वस्तु को जान रहे हैं उसका अंतर्मूर्त वहाँ उपयोग किया, इसे दर्शन उपयोग भी एक दो समय का नहीं होता, वो भी अंतर्मूर्त का अंतर्मूर्त का ही होता है, वो भी मिनिमम मैक्सिमम अंतर्मूर्त ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो देखो मति श्रुत अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के द्वारा अंतर्मूर्त काल पर्यंत अपने अपने विषय का जो विशेष ज्ञान होता है उसे साकार उपयोग कहते हैं। वो कौन सा किसका क्या ज्ञान है हमने देखा था, पांच इंद्रिया मन के द्वारा जो जानना है वो मति ज्ञान है, मति ज्ञान से जाने हुए अन्य पदार्थ से अन्य पदार्थ का ज्ञान वो श्रुत ज्ञान है, हाँ फिर अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान का तो विषय हमने जान लिया। अब 230, इंद्रिय मनो ही नावा अर्थे अविशेषि दून जम गहणम अंतो मुहूर्त कालम वजो वो सो अनायारो। इंद्रिय मन और अवधि के द्वारा, यानी इनके पहले दर्शन उपयोग होता है, श्रुत ज्ञान और मन परिज्ञान को छोड़ा था, इंद्रिय मन और अवधि के द्वारा अंतर्मूर्त काल पर्यंत पदार्थों की विशेषता किए बिना जो ग्रहण होता है, पदार्थों की विशेषता नहीं की और उसका ग्रहण हुआ, जिसको हम देखना कहते हैं, वो दर्शन है, उसे निराकार उपयोग कहते हैं। सागारमणागारम केवलिनम युगवदेव उवजोगे साधी अनंत कालो पच्चको सौभाव गलो। केवलियों का साकार और अनाकार उपयोग एक साथ होता है। वह सादी होकर भी अनंत काल तक रहने वाला था। देखो, इंद्रिय मन और अवधि के द्वारा जो जानना होता है उसके पहले पूर्व में दर्शन होता है, परंतु केवल ज्ञान के साथ साथ केवल दर्शन होता है, यानी वहाँ वो देखना भी होता है जो उसको भेद रहित भी जानना यानी देखना होता है और भेद से ही जानना भी होता है। फिर पढ़ते इसको। केवलियों का साकार और अनाकार उपयोग एक साथ होता है, ये उनकी विशेषता। सदमस्तों का एक क्रमिक उपयोग, दर्शनोपयोग पूर्व ज्ञानोपयोग होता है। अगर क्रमिक नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा भी मानने वाले विद्वान है, अभी इसका ज्ञानोपयोग चल रहा है तो आगे जिसका जानेंगे उसका दर्शनोपयोग चल रहा है, क्या ऐसा होगा? नहीं नहीं, केवली की बात नहीं, छद्मस्तों की
नहीं होगा।
उसने एक ही पदार्थ में इसमें दर्शनोपयोग हुआ, फिर इसमें ज्ञानोपयोग हुआ, इसका ज्ञानोपयोग हो रहा है तब अन्य पदार्थों का दर्शनोपयोग, वो तो केवली से भी ज्यादा बढ़कर हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो छद्मस्तों का उपयोग है वो क्रमिक ही होता है, एट ए टाइम ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा। तो यहाँ लिखा ना, केवलियों का तो एक साथ होता है। वह सादी होकर भी, सादी क्यों कहा?
पहले
नहीं तो केवल ज्ञान हुआ तब से शुरू हुआ ना वो, सादी होकर भी अनंत काल तक रहने वाला होता है और वह प्रत्यक्ष सब पदार्थों को ग्रहण करने वाला होता है। प्रत्यक्ष ने डायरेक्ट आत्मा के द्वारा और स्पष्ट होता है, यानी उसमें कोई अन्य सहायक की जो निमित्त की वहाँ जरूरत नहीं है। आत्मा आत्मा निश्चित है और सब जान, सबको जान लेने की देखने की उसकी अपनी योग्यता से जान देख लेता है। 417 पर आ गए। वह उपयोग ज्ञान मार्गणा और दर्शन मार्गणा में अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि 20 प्ररूपणा में उपयोग प्ररूपणा अलग बताई है, तो ज्ञान मार्गणा में सारे भेद बताए थे ना, मतिश्रुता अवधि मन परे वगैरह, तो उसमें कहते ना, और दर्शन मार्गणा भी उसके भेद हुए उसमें भी बता देते, तो ये 20 नंबर की प्ररूपणा अलग क्यों बताई, ये प्रश्न है। तो उसमें अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और दर्शन इन दोनों के कारण रूप ज्ञानावरण और दर्शनावरण के सूक्ष्म को उपयोग मानने में विरोध आता है। ज्ञान मार्गणा दर्शन मार्गणा में उसके विशेष सूक्ष्म के द्वारा उसका वर्णन किया था,
तो उसमें ये नहीं है।
ये उपयोग बात ही केवल उपयोग की बात है, वहाँ तो ज्ञान मार्गणा में तो वीर्यांतराय का और ज्ञानावरण का सूक्ष्म होता है वगैरह वगैरह, लब्धि उपयोग मिलकर वहाँ ज्ञान की पर्याय की बात की, यह मात्र उपयोग की बात कर रहे हैं। शंका, यह 20 प्रकार की प्ररूपणा रही आओ, यानी भले वो है तो है, क्योंकि यह सत प्ररूपणा है इतनी बात बता रहे, किंतु यह बतलाइए कि यह प्ररूपणा सूत्रानुसार कही गई है या नहीं, क्योंकि पहले तो सूत्र बताए थे, तो ये सूत्र के अनुसार यह प्ररूपणा हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रतिशंका, आचार्य उसको फिर पूछ रहे, इस प्रश्न से क्या प्रयोजन है, ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने का कारण क्या है? शंका, यदि सूत्रानुसार नहीं कही गई है तो यह प्ररूपणा नहीं हो सकती, क्योंकि यह सूत्र में नहीं कहे गए विषय का प्रतिपादन करती है, यानी सूत्र के अनुसार नहीं होगी तो यह ठीक नहीं है, और यदि सूत्रानुसार कही गई है तो जीव समास, प्राण, पर्याप्ति, उपयोग और संज्ञा प्ररूपणा का मार्गणाओं में जिस प्रकार अंतर्भाव होता है उस प्रकार कथन करना चाहिए। क्या कहते हैं, सूत्रानुसार है तो सूत्र में तो केवल मार्गणाओं का गुणस्थानों का उपदेश दिया था, उसमें इंक्लूड कर दो इनको, अलग से बताओ मत, ये कहना चाहते। समाधान, दूसरे पक्ष में दिया गया दूषण तो यहाँ पर आता नहीं है। ये दूसरा दूषण क्या है कि मार्गणाओं में उसका कथन करो, अन्य से यानी अलग से मत बताओ, क्योंकि वैसा स्वीकार नहीं किया है। तथा प्रथम पक्ष में जो जीव समास आदि के 14 मार्गणाओं में अंतर्भाव करने की बात कही है उसे कहते हैं, मैंने किसमें क्या अंतर्भूत हो सकता है उसकी बात अभी बताएंगे। पर्याप्ति और जीव समास प्ररूपणा काय और इंद्रिय मार्गणा में अंतर्भूत हो जाती है, क्योंकि पर्याप्ति की जो बातें हमने देखी थी और जीव समास में हमने देखा ना, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर है, द्विंद्रिय, तिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी, वो सारे काय मार्गणा में, इंद्रिय मार्गणा में इंक्लूड हो जाते हैं। पर्याप्ति का जो विषय है वो भी उन्होंने वही तभी बताया था, किसकी क्या पर्याप्ति होती है, पर्याप्त किसको, अपर्याप्त किसको कहना, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त रूप भेदों का उक्त दोनों मार्गणाओं में प्रतिपादन किया गया है, यानी उनको अगर इंक्लूड करना चाहते हैं सूत्र के अनुसार तो उसमें वो गर्वित होती है। उच्छ्वास, निश्वास, वचन बल और मनोबल, इन तीन प्राणों का भी उक्त दोनों मार्गणाओं में ही अंतर्भाव होता है, क्योंकि ये तीनों प्राण पर्याप्तियों के कार्य है, यानी पर्याप्तकों के कार्य है या पर्याप्तियों के वे कार्य, पर्याप्तियां कारण है और ये उसके कार्य है। हमने देखा था ना, तो अपर्याप्तों के ये नहीं पाए जाते, पर्याप्तों में होते हैं। काय बल प्राण योग मार्गणा से निकला है, क्योंकि योग का लक्षण बल है, क्योंकि हमने देखा ना जहां तक वो तो काय योग है तो वहां तक तो काय बल प्राण भी है, अयोगी को तो नहीं था। आयु प्राण गति मार्गणा में अंतर्भूत है, क्योंकि आयु और गति ये दोनों परस्पर अविनाभावी है, जैसे मनुष्य आयु है तो उसके साथ मनुष्य गति भी है वहां पर, अर्थात विवक्षित गति के उदय होने पर तज्जातीय यानी उस जाति के आयु का उदय होता है, और विवक्षित आयु के उदय होने पर तज्जातीय गति का उदय होता है, यानी दोनों एक में जो पूरक है वही उसी का उदय होगा एक साथ। इंद्रिय प्राण ज्ञान मार्गणा में अंतर्लीन हो जाते हैं, क्योंकि भावेंद्रिया ज्ञानावरण के सूक्ष्म रूप होती है। इंद्रिय प्राण में हमने देखा था कि इंद्रिय जो जानने रूप कार्य है, इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य है, तो ये कार्य तभी होगा जब ज्ञानावरण का वैसा सूक्ष्म होता है। आहार के विषय में जो तृष्णा या आकांक्षा होती है उसे आहार संज्ञा कहते हैं, और वह रति स्वरूप होने से मोह की पर्याय है, भेद है। रति भी राग रूप होने के कारण माया और लोभ में अंतर्भूत होती है। क्या कहना चाहते हैं, ये सभी जो मोह के भेद है ना, कितने हैं टोटल, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। अब चारित्र मोनी के भेद कितने हैं, 16 कषाय और 9 कषाय, तो यहाँ क्या कहते हैं उसमें राग रूप कितने और ये द्वेष रूप कितने मालूम है, आप बताएं, क्रोध और मान, द्वेष रूप और माया लोभ राग, यानी 8-8 का बंटवारा हुआ, अब 9 कषाय में लगाना है।
वो जो अशुभ है वो
बताओ, सारे अशुभ ही है। हास्य रति तीन वे, राग रूप अभिलाषा है ना किसी चीज की, और अरति और शोक, भय और जुगुप्सा, वो द्वेष। यहाँ क्या लिया? तो ये तो आहार संज्ञा है, वो रति स्वरूप होने से इच्छा है ना उसको प्राप्त करने की, तो राग रूप है, माया और लोभ में अंतर्भूत होती है। इसलिए कषाय मार्गणा में आहार संज्ञा समझना चाहिए। भय संज्ञा भय स्वरूप है, और भय द्वेष रूप होने के कारण क्रोध और मान में अंतर्भूत है, इसलिए भय संज्ञा भी कषाय मार्गणा से उत्पन्न हुई है। मैथुन संज्ञा वेद मार्गणा से उत्पन्न हुई है, क्योंकि वह मैथुन संज्ञा स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद के तीव्र उदय रूप है। परिग्रह संज्ञा भी कषाय मार्गणा से उत्पन्न हुई है, क्योंकि यह संज्ञा बाह्य पदार्थों में व्याप्त लोभ रूप है। बाह्य पदार्थ संबंधी लोभ लेना है इसमें, तो है तो लोभ रूप। साकार उपयोग ज्ञान मार्गणा में और अनाकार उपयोग दर्शन मार्गणा में अंतर्भूत होते हैं, क्योंकि वे दोनों ज्ञान और दर्शन रूप ही है। ऐसा होते हुए भी,
अलग से बताया ना,
वही तो कहते हैं अभी ये वाक्य पर, ऐसा होते हुए भी, यानी उसका वर्णन उसमें भी कर सकते हैं। ऐसा होने पर भी उक्त प्ररूपणाओं के स्वतंत्र कथन करने में पुनरुक्ति दोष भी नहीं आता, क्योंकि मार्गणाओं से उक्त प्ररूपणाएं कथनचित भिन्न है किसी अपेक्षा से। वो कौन सी अपेक्षा, उन्होंने एक एक का वर्णन करते हुए बता दिया। मैंने गर्भित करना चाहते तो ऐसे भी है, जो 20 प्ररूपणाएं ना उसमें दो में ही विभाजित करो कोई कहेगा, तो गुणस्थान और मार्गणास्थान कहेंगे। और हमने जो अभी बताया ना कौन सी किसमें इंक्लूड हो सकती है उसको वहां कर देंगे, तो हमने 20 प्ररूपणा कवर कर दी। और मार्गणाओं के अलग अलग नाम बताने हैं, तो गुणस्थान, फिर वो जीव समास वगैरह, और फिर 14 मार्गणा अलग बताएं। एक कथन करने की पद्धति। शंका, प्ररूपणा करने से क्या प्रयोजन है, क्यों प्ररूपणा करेंगे इतने? समाधान, सूत्र के द्वारा सूचित पदार्थों के स्पष्टीकरण करने के लिए 20 प्रकार से प्ररूपणा कही जाती है। हम ये सारे सूत्र पढ़ के आए हैं, 14 तो वहाँ गुणस्थान बताए थे और 14 मार्गणाएं पदार्थ है, वही जीव पदार्थ का ही विशेष वर्णन किया था, और उसी को और स्पष्ट करने के लिए ये 20 प्ररूपणा कही जाती है। तो सामान्य से इन्वर्टेड कहाँ है? ओघे न अस्थि मिच्छा इत्थि सिद्धा चेरी, ये पहले अपने आया था। ओघ से होते हैं ऐसा जो है ना, हमने वहां तो उन स्थानों के नाम बता दिए थे, वही सूत्र था वहां पर। यह ऊपर क्या लिखा, लिखो 419 पेज पर पहली लाइन, तथ्य यानी वहां इन्वर्टेड में लिखा है। क्या लिखा है? ओघेन अस्थि मिच्छा इति, और बड़ी बिंदी है उसका अर्थ बीच में डॉट 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 डॉट, और उसका अंत में क्या लिखा था? सिद्धा चेदी। अभी उसी को यहाँ पूरा खोल के बताया है। इस इन्वर्टेड में क्या लिखा है देखो, 418 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन, सामान्य से, ये वहां जो हमने पहली पुस्तक में सूत्र पढ़ा था उसी का यह अर्थ है। सामान्य से मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्य दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक और क्षपक, क्योंकि दोनों दोनों अलग अलग है ना, उपशमक भी होते हैं क्षपक भी होते हैं। अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक और क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक और क्षपक, उपशांत कषाय वितराग छद्मस्थ, यह अलग लिया, क्षीण कषाय वितराग छद्मस्थ, ये बारवा संयोग केवली अयोग केवली, और सिद्ध जीव होते हैं। ये पहले हम ओग प्ररूपणा बताई थी, पहले इस ओग सूत्र की प्ररूपणा कहते हैं, वह इस प्रकार है उसका, उसकी प्ररूपणा ने अभी उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, 14 गुणस्थान है की बात है ना, अपनी सत प्ररूपणा चल रही। और 14 गुणस्थानों से अतीत गुणस्थान भी है। अतीत गुणस्थान है इनसे अतीत सिद्ध भगवान भी है। 14 गुणस्थानादीद गुणस्थानम की अतीत गुणस्थान भी है और गुणस्थानों से अतीत भी है। 14 जीव समास है इसमें से उन्होंने निकाला। 14 जीव समास है क्योंकि 14 जीव समास है कहने से, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो केंद्रीय से संगी पंचेंद्रिक होते हैं वो सब उसमें आ गए, पर्याप्त भी होते हैं पर्याप्त, उसमें से जीव समास निकले। ये प्ररूपणा उसमें से निकाल कर बता रहे शंका, वे 14 जीव समास कौन से हैं? उसका समाधान, एक इंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। सूक्ष्म जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। द्विंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। तीनिय जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। चतुरिंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, संगी और असंगी। पहले ये संगी असंगी विभिन्न करेंगे, बाद में पर्याप्त अपर्याप्त कहेंगे। संगी जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। असंगी जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस प्रकार ये 14 जीव समास होते हैं और अतीत जीव समास भी होते हैं, क्योंकि सिद्धों को इसमें कहीं नहीं रखना है तो अतीत जीव समास को, जैसे वहां गुणस्थान अतीत कहे थे, अतीत गुणस्थान उसको अतीत गुणस्थान कहा, इसको अतीत जीव समास कहा। यानी अतीत नाम का कोई गुणस्थान नहीं, गुणस्थानों से अतीत उसको अतीत गुणस्थान कह दिया। तो देखो अभी हम तो इसको क्या कहते हैं, एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादल के, द्विंद्रिय तीनिय सब इंद्रिय, असंगी संगी पंचेंद्रिय, सबके लिए पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी, ये 14 आ गए उसके अंदर। इन्होंने एक एक का नाम लेके बताया अलग अलग। हाँ अभी नीचे का टेबल बता रहे हैं। देखो ये ओघे ना अथी लिखा था वहां एक नंबर ऊपर पर फर्स्ट लाइन में, और उसके यहाँ नीचे फुटनोट बता रहे हैं, मिच्छा इट्टी सिद्धा चेरी। अच्छा वो नहीं, फुटनोट में कुछ बात नहीं है। अभी सामान्य जीवों के सामान्य आलाप, आलाप को कहे, आलाप कहते कथन को, कथन की जो विशेषता है उसको आलाप कहेंगे। सामान्य जीवों के सामान्य आलाप यानी यहाँ ये 20 प्ररूपणा बता रहे हैं, और ये 20 प्रण अपना किसको लगाना है, सामान्य से सभी जीवों पर लगाना है। तो कहते गुणस्थान, तो 14 गुणस्थान होते हैं और नीचे सिद्धों के बारे में अतीत गुणस्थान बताया। जीव समाज टोटल कितने हैं, तो 14 है और नीचे अतीत जीव समाज बताया। अब पर्याप्ति कितनी होती है, तो आपको याद होगा पर्याप्तों के भी संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्तों के भी 6 पर्याप्तियां और अपर्याप्तों के भी 6 हैं, तो उसको कहेंगे 6-6। असंगी से द्विंद्रिय तक 5-5 और एक इंद्रियों के लिए 4-4 वही लिखा है। 6 पर 6 अपर्याप्तियां 5 पर 5 अपर्याप्तियां 4 पर्याप्तियां 4 अपर्याप्तियां, क्योंकि उनकी पर्याप्तियां तो एक भी पूरी नहीं होगी, तो 4 का अपर्याप्तिया कहा और सिद्धों को अतीत पर्याप्ति कहा। अब प्राण, अभी हमने जो गिनाए थे 10-7 संगी पंचेंद्रिय के, 9-7 असंगी के लिए, 8-6 चतुरिंद्रिय के लिए, 7-5 ये इसी पद्धति से लिखने की वो उनकी पद्धति है। हर बार वो डिस्क्राइब नहीं करेंगे जहाँ जिसकी बात है, अभी तो हम सभी जीवों पर एट ए टाइम लगा रहे हैं, डायरेक्ट चतुरिंद्रिय की बात पूछेंगे तो वहाँ प्राण के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, 8-6 लिख देंगे। ये 3 के लिए 7-5, द्विंद्रिय के लिए 6-4, एक इंद्रिय के लिए 4-3। अब ये संयोग केवल के लिए 4-2 और फिर 1, क्योंकि पहले वो तो निरोध करते ना वचन का भी और फिर श्वासोश्वास का, फिर भी काय से निरोध करते इसलिए काय का रह जाता है वहां पर, यानी आयु प्राण भी रहेगा और काय बल प्राण रहेगा लास्ट में, इसलिए दो लिखा। और अयोगी को एकमात्र आयु प्राण दे जाता और सिद्धों को अतीत प्राण कह दिया। अभी संज्ञा चार है, ये सभी जीवों को सामान्य से लगा रहे, कितनी संख्या उसको बताना है। और क्षीण संज्ञा किसको कहेंगे, ग्यारहवें को भी कहेंगे, ग्यारहवा बारहवा तेरहवा चौदहवा और सिद्ध भगवान। हल मेरी बात, उनके संज्ञा नहीं है। क्षीण संज्ञा किसको कहेंगे, जैसे क्षीण कषाय किसको कहा था हमने वैसा। अब गति में चार गतियां और सिद्ध गति, इंद्रिय मार्गणा में पांच इंद्रिय मार्गणा के पांच भेद है। और अतीत जाति का, क्योंकि एक इंद्रिय जाति भी इंद्रिय जाति ये बात की थी, काय मार्गणा की अपेक्षा छह भेद हुए ना, पांच स्थावर त्रस काय और ये अतीत काय वाली बात है। योग मार्गणा की अपेक्षा 15 भेद है, कैसे याद है ना, मन के चार, वचन के चार और काय मार्गणा के, काय योग के 7 भेद थे। और ये अयोग, अयोग में 14 गुण स्थान और सिद्ध भगवान लेना। कषाय 4 है और अकषाय भी जीव है, 11वें 12वें 13वें 14वें और सिद्ध भगवान। ज्ञान मार्गणा में उसके 8 प्रकार के ज्ञान बताए, वेद रह गया बताना, मेरा पढ़ना रह गया। कषाय के पहले वेद 3 प्रकार के हैं, त्रिवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, यानी वो वेद वाले जीव। और अपगत वेदी भी है 9वें के दूसरे भाग से लेकर 10वें 11वें 12वें सब सब आगे सिद्ध भगवान का। वेद हुआ, अकषाय हुआ, ज्ञान में ज्ञान के पर्याय की अपेक्षा जो भेद है उसको बताना। कुमति कुशोत्तर और विभंग ज्ञान पहला और दूसरा गुणस्थान, तीसरे में मिश्र ज्ञान कहेंगे। और आगे मति श्रुत अवधि मन पर्याय और ये केवल ज्ञान। संयम की अपेक्षा 7 भेद हमने देखे थे, सामायिक से उपस्थापना हुए रह सब। और वहां अनुभय लिया, ना संयम है ना असंयम है, ऐसे कहां तक कौन से लेना, जो संयम नहीं। हाँ अनुभय कहेगी, वो संयता संयम तो उभय हुआ, अनुभय संयम किसको लेना, सिद्धों को। देखो संयम है ना, उससे विरत होना, उससे हटना, उसका परिहार करना है? जो सावध्य का, तो अभी हटने रूप कुछ नहीं रहा ना, यदि वो प्रवृत्त रूप होते हैं तो उसमें से हटने की बात आती है। ये सिद्ध भगवान दर्शन में 4 प्रकार के हैं, चक्षु चक्षु अवधि मन और केवल दर्शन। और केवल दर्शन तो बाद में भी होता है, तो केवल दर्शन ही तो जीव है, कौन कौन है वो तो बात। लेशा में द्रव्य की छह, अभी एक प्रश्न अपना हुआ नहीं है, पहले हुआ था ना द्रव्य लेशा वगैरह, शरीर का रंग और भाव लेशा है वो परिणाम। कषाय और योग का वो जो जिसके कारण वो द्रव्य ने कर्मों से लिंपता है उसको लेशा का ही थे। और अलेशा वाले हैं 14 गुणस्थान वाले और सिद्ध भगवान। ये भव्य भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। और जो भव्य अभव्य से पार, क्योंकि जो सिद्ध हो चुके ना, अभी उसको होने योग्य नहीं कहेंगे। सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद बताए, तो उसमें वो तो शायद सम्यक को कहने से वो सब आ गए ना, चौथे से सिद्ध तक सब आ गए, इसकी उसको अलग से नहीं बताया। संगी के 2 भेद, संगी असंगी, और जो संगी भी नहीं असंगी भी नहीं, ऐसे कौन है, 13वें 14वें भी और सिद्ध। आहारक के 2 भेद, आहारक है कोई अनाहारक है, अनाहारक कब कब देखे थे याने?
हाँ,
परंतु उसमें विग्रह गति
है,
विग्रह गति के गुणस्थान कहाँ या अनाहारक हो सकते, तो पहला, दूसरा, चौथा, और संयोग केवली में वो समुद्घात अवस्था में तीन समय तक और चौथे गुण स्थान वाले और सिद्ध या नाहर। अब उपयोग दो भेद किए हम पर साकार और ननाकार, और जो युगपद उपयोग वाले जिसको उभय उपयोग का इसमें दो ही भेद किए उन्होंने साकार ननाकार। कहीं कहीं उपयोग के भी भेद करते हैं, कितने ज्ञान और कितने दर्शन है उसके टोटल यहाँ लिखेंगे। यहाँ तो इन जनरल बात करना था ना, इसलिए साकार ननाकार इतने ही बात करें, जो विशेष भेद हो गए तो उसके देखो। ये जो सामान्य आलाप का और उसमें सामान्य जो है ना सभी जीव लिए संसारी सिद्ध सब, अब उसमें गुणस्थानों में लगाएंगे या जीव समासों में एक एक को लेंगे और उसमें सब 20 लगाएंगे, ये पक्का हो जाएगा अपना। और बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी ये जो ऐसे 20 नाम लिए हैं ऐसे हर एक के ऊपर नाम लिखेंगे और उसकी किसके बारे में कथन है वो उसको ऊपर हेडिंग देंगे। जैसे समय ज्ञान चंद्रिका में लास्ट में 100 पेजेस ऐसे हैं, आप थे ना, हाँ तो अच्छा है ना, तो उसमें बिल्कुल वो उसके बारे में अपने यानी जो कहते हैं ना पक्का हो जाता है। 232 ऊपर पढ़ेंगे। जे ही अणे या जीवा नज्जन्ते बहुविहावितज्जादि ते पुनः संगहिदग्धा जीव समासाप्ति विन्नेया। जीव समास किसको कहना उसकी बात करें, जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जातियां जानी जाती हैं, अनेक अर्थों के संग्रह करने वाले उन धर्मों को क्या कहते हैं। यानी ये जीव समास है ना, उनके ग्रुप बनाए समूह बनाए, समास है ना समूह उनका, तो उसमें क्या हमने अनेक प्रकार के जीवों को इंक्लूड कर दिया, क्यों, कुछ विशिष्ट धर्मों के आधार से, उनमें कुछ विशिष्ट धर्म उनमें समान है। जैसे हमने जीव समास 14 जीव समास देखे, उसमें एक केंद्रीय में सूक्ष्म, तो सूक्ष्म एक केंद्रीय उसमें भी पर्याप्त लिए, तो उसमें वो एक केंद्रीय जाति की समानता है और सारे सूक्ष्म है उनकी समानता है, तो उसके कारण हमने और सारे अपर्याप्त, तो हमने नाम दिया सूक्ष्म एक केंद्रीय अपर्याप्त। उसमें वो वायु का एक है क्या, निगोध है क्या, अन्य कोई, उसकी चर्चा नहीं की हमने सामान्य। अब वो सामान्य एक धर्म की अपेक्षा उनमें हमने उसको इकट्ठा किया। तो कहते जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनके अनेक प्रकार की जातियां जानी जाती है, अनेक अर्थों के संग्रह करने वाले उन धर्मों को जीव समाज कहते, ऐसा जानना चाहिए। और उस धर्म के द्वारा जीवों के भेद हो गए। 233 बादर सुहु में इंद्रिय विचौर इंद्रिय असन्निसन्निय पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते चौदसा होंती। जो अभी हमने याद किया है वही है। बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। पहले असंगी, क्योंकि हम क्रम से ले रहे, पहले असंगी फिर संगी कहेंगे। ये सातों प्रकार के जीव पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं, इसलिए जीव समास के कुल भेद 14 बतलाए हैं। ये तो आसान है समझने के लिए। 6 पर्याप्तिया 6 अपर्याप्तिया, यानी यहाँ तो जो क्रम से जो जो बातें गुणस्थान की बात चर्चा हमने की है। अब ये जो हमने आलाप अभी देखा ना पढ़ा, पहले कॉलम में गुणस्थान बताए थे वो हमने जान लिए, जीव समास अभी बताए, अब पर्याप्तियों को बताएंगे, यानी कौन कौन से आलाप कहने योग्य उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी जो हमने उसमें पढ़ा था वो तो टेबल दिया, तो टेबल में क्या लिखा है, तो 6 6 5 5 4 4 उसका अर्थ बताएंगे। उसी को कहते 6 पर्याप्तियाँ 6 अपर्याप्तियाँ, 5 पर्याप्तियाँ 5 अपर्याप्तियाँ, 4 पर्याप्तियाँ और 4 अपर्याप्तियाँ है, तथा अतीत पर्याप्ति भी है। अतीत पर्याप्ति जिनके पर्याप्ति नहीं होती, अभी तो सिद्ध भगवान को लेंगे हम, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आनापान पर्याप्ति जिसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी कहते हैं, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये छह पर्याप्तियाँ संगी पर्याप्तकों के होते हैं। इन्हीं संगी जीवों के अपर्याप्त काल में पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, यही छह अपर्याप्तियाँ होती है। मन पर्याप्ति के बिना उक्त पांचों ही पर्याप्तियाँ असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों से लेकर द्विंद्रिय पर्याप्त तक जीवों के होती है। अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त उन्हीं जीवों के अपूर्णता को प्राप्त वे ही पांच अपर्याप्तियाँ कहलाती है। भाषा पर्याप्त बिना यही चार पर्याप्तियाँ एकेंद्रिय पर्याप्तों के होती है। इन्हीं एकेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल में अपूर्णता को प्राप्त यही चार अपर्याप्तियाँ होती है तथा इन छह पर्याप्तियों के अभाव का नाम अतीत पर्याप्ति कहते हैं, कहा भी है 234 के लिए। ये सारे गोमरसार जीवकांड की गाथा यहाँ बताई है, परंतु जीवकांड तो बाद में रचा गया था, नहीं ये तो पूर्वापार चली आई गाथा होनी चाहिए, वहाँ पर उन्होंने जो है उसी को आगे बढ़ाया। आहार शरीर इंद्रिय पज्जतियाण पाण भास मनो चत्तारी पंच छप्पिय ए इंद्रिय विगल सन्नीनम। आहार शरीर इंद्रिय आनापान भाषा और मन ये छह पर्याप्तियां हैं। हर एक के आगे पर्याप्ति पर्याप्ति शब्द लगाएंगे। उनमें से एकेंद्रिय जीवों के चार, विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रियों के पांच, यानी द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनके पांच और संगी जीवों के छह पर्याप्तियां होती है। 235 जह पुन्ना पुन्नाई पज्जत्य रामुने यौवा। जिस प्रकार गृह घट और वस्त्र आदि द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, नहीं समझे, ये घर बांधना चालू कर दिया, बन रहा है तो उसको हम अपूर्ण कहेंगे, पूरा होने पर पूर्ण कहेंगे। घट आदि द्रव्य या रोटी बना रही है, कहाँ अभी बेल रही है, अभी पूरी कहाँ हुई है, तो अधूरी है, अधूरी उसको कहना अपूर्ण। वस्त्र के बारे में भी ऐसा है ना, वो वस्त्र बुनते हैं या वस्त्र आप सिलाते हैं, तब भी वो जब तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ उसको हम अधूरा कहेंगे, इसलिए उसको पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। ये तो उदाहरण दिया। उसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी जीवों को ही पर्याप्त और अपर्याप्त कहेंगे। उनमें से पूर्ण जीव पर्याप्त और अपूर्ण जीव अपर्याप्त कहलाते हैं। पर्याप्ति के बाद अभी प्राण के कॉलम में जो लिखा था देखो, उसी को यहाँ खोलकर बता रहे क्या लिखा है, उसके लिए ऊपर के 236 को पढ़ेंगे। पंचे विंदीय पाणा मणवचिकाए नतिन्नि बल पाणा आणा वाण पाणा आउग पाणे न होंति दस पाणा। हाँ ये, हाँ इसके बाद में पढ़ना चाहिए था, इसका नीचे आते पूरा पढ़ लेते बीच वाला पैराग्राफ। ये जो उस कॉलम में जो लिखा था ना, दस सात वगैरह, उसके बाद पहले लिखे दस प्राण सात प्राण, नौ प्राण सात प्राण, आठ प्राण छह प्राण, सात प्राण पांच प्राण, छह प्राण चार प्राण, चार प्राण तीन प्राण, फिर चार प्राण दो प्राण और एक प्राण होते हैं तथा अतीत प्राण स्थान भी है, यानी वो अलग अलग स्थान बताए किसी किसी जीव के कौन कौन से होते हैं। चक्षुरिंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जीवेंद्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये पांच इंद्रिया मनोबल वचन बल काय बल ये तीन बल श्वासोच्छ्वास और आयु ये 10 प्राण है। इनके नंबरिंग उल्टा सुलटा लिया क्या, एकदम उल्टा भी नहीं, चक्षुलिंग यत्र तत्रानुपूर्वी है, चक्षु श्रोत्र उल्टा पुल्टा हुआ। कहाँ भी है, हमें हमने ऊपर गाथा पढ़ी थी उसी का अर्थ नीचे दिया है। पांचों ही इंद्रिया मनोबल वचन बल और काय बल ये तीन बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण ये 10 प्राण है। वो इंद्रियों में भी इंद्रिय प्राण ही समझना, इंद्रियों के द्वारा जानन रूप जो कार्य है उसकी बात यहाँ ले लेना। पूर्वोक्त 10 प्राण ये तो अभी हमने जाना है ना, उसी को पढ़ लेते। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तकों के होते हैं। आनापान वचन बल और मनोबल इन तीन प्राणों के बिना शेष 7 प्राण संगीय पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के होते हैं। 10 प्राणों में से मनोबल के बिना शेष 9 प्राण असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के होते हैं। वो असंगी है ना, इसलिए मन प्राण नहीं होता, उनके पर्याप्त में भी नहीं है। और अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त इन्हीं जीवों के वचन बल और आनापान प्राण के बिना शेष 7 प्राण होते हैं, यानी 9-7 हो गए। पूर्वोक्त 9 प्राणों में से श्रोत्रेंद्रिय प्राण को कम कर देने पर शेष 8 प्राण चतुरेंद्रिय पर्याप्त जीवों के होते हैं। इन्हीं अपर्याप्त जीवों के यानी चतुरेंद्रिय के अपर्याप्त आनापान और वचन बल के बिना शेष 6 प्राण होते हैं। पूर्वोक्त 8 प्राणों में से चक्षु इंद्रिय के कम कर देने पर शेष 7 प्राण तीन्द्रिय पर्याप्त जीवों के होते हैं। उन 7 प्राणों में से आनापान और वचन बल प्राण को कम कर देने पर शेष 5 प्राण तीन्द्रिय अपर्याप्तकों के होते हैं। ये सब आसान है और अभी अभी हमने देख लिया। तीन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के कहे गए 7 प्राणों में से घ्राणेन्द्रिय के कम कर देने पर शेष 6 प्राण द्विन्द्रिय पर्याप्तकों के होते हैं। उन 6 प्राणों में से आनापान और वचन बल के कम कर देने पर शेष 4 प्राण द्विन्द्रिय अपर्याप्तकों के होते हैं। द्विन्द्रिय पर्याप्तकों के कहे गए 6 प्राणों में से अब 2 एट अ टाइम कट करेंगे। रसनेन्द्रिय प्राण और वचन बल प्राण के कम कर देने पर शेष 4 प्राण एकेंद्रिय पर्याप्तकों के होते हैं। उनमें से आनापान प्राण यानी वो श्वासोच्छ्वास कम कर देने पर शेष 3 प्राण एकेंद्रिय अपर्याप्तकों के होते हैं। अब यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवानी।